प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 14 दिसंबर 2016 है और आज के इस afeias.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले दो ऑडियो के अंतर्गत हम लोगों ने डियर जिंदगी फिल्म पर कुछ बातें की थी और मुझे यकीन है कि जो भी बातें की गई थी उन पर आप सब ने भी जमकर विचार किया होगा। और सच पूछिए दोस्तों, तो इन बातों का लाभ और बातों का मजा भी तभी है जब आप सब भी अपनी अपनी ओर से सोचना शुरू करें। मित्रों, आज के लिए मैंने जो विषय चुना है, सच तो यह है कि डायरेक्ट तो आप लोगों ने ही प्रोवाइड नहीं किया है, लेकिन थोड़ा सा मैं भूलभुलैया वाली भाषा में बात कर रहा हूं कि आप लोगों ने ही प्रोवाइड किया है, भले ही वह इनडायरेक्ट में क्यों न हो। आइए तो अब बात शुरू करते हैं। बात कुछ यूं है कि मेरे पास पिछले कुछ दिनों से, खासकर अभी आईएएस के जो मेंस के एग्जाम हुए हैं, काफी स्टूडेंट्स के मेल आए और उन मेल्स में उन्होंने मुझसे माफी की मांग की कि सर हमें माफ कीजिएगा। उन्होंने कोई गलती नहीं की थी जिसके लिए वो माफी मांगे, और सच पूछे तो अगर उन्होंने कोई गलती की भी थी तो उसकी मुझे जानकारी नहीं थी। उन्होंने खुद पहली बात तो मुझे जानकारी दी और दूसरी बात है कि उनको लग रहा है कि उन्होंने गलती की। दरअसल बात मित्रों यह है कि खासकर उसमें हमारे क्लास के स्टूडेंट्स ज्यादा थे, उनकी संख्या ज्यादा थी जिस तरह से उन्होंने मेंशन किया हुआ था। मित्रों की जो स्टूडेंट क्लास में आते हैं, 15 दिन की क्लास अटेंड करके जाते हैं, मोर देन 90 आवर्स तक उनसे बातचीत होती है, 90 घंटे से भी अधिक वक्त हम लोग साथ में गुजारते हैं और उनको एक सारे सब्जेक्ट की एक बेसिक जानकारी दी जाती है कि वो कैसे विषय को समझेंगे पढ़ेंगे। और इसके बाद उनसे कहा जाता है कि प्लीज आप डेली ऑडियो सुनना बंद कतई ना करें। ठीक है मित्रों, यहां तो जोश होता है, सब स्वीकार भी करते हैं, संकल्प भी मन ही मन ले लेते हैं, लेकिन जाने के कुछ दिनों के बाद शायद उनमें से बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी वजह से ऑडियो सुनना बंद कर देते हैं। अभी जब मेंस के पेपर आए तो उन लोगों ने मेंस के पेपर देखे होंगे और देखने के बाद उन्होंने स्वीकार किया कि डेली ऑडियो न सुनकर dailyis.com पर न जाकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। तो ये उन्होंने अपने मन में स्वीकार किया और फिर उन्हें लगा कि अपनी गलती के लिए सर को बता देना चाहिए और उनसे माफी भी मांग लेनी चाहिए। तो मित्रों, सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों की इस आत्म स्वीकृति की भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहूंगा कि आप लोग इसे स्वीकार कर रहे हैं, और उससे भी बड़ी बात है कि मुझे बता रहे हैं। जैसा कि कल के अपने डेली ऑडियो लेक्चर में मैंने एक स्टूडेंट का मेल पढ़कर सुनाया था कि किस तरह से उन्होंने साफ साफ लिखा कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है, और उन्होंने कहा कि यह बात दूसरे स्टूडेंट्स को भी बताई जाए ताकि वो ऐसी गलती ना करें। तो मित्रों, बताने का साहस भी एक बहुत बड़ी बात होती है, तो इसके लिए भी मैं आप सबकी प्रशंसा करना चाहूंगा। मित्रों, अब मैं लाइफ मैनेजमेंट वाले पॉइंट पर आता हूं इस पृष्ठभूमि के बाद। मित्रों, वैसे तो सामान्य तौर पर यही कहा जाता है जो कहावतों में है कि अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। तो इसको अगर मैं आप सब पर अप्लाई करूं, या हम इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर देते हैं, ज्यादा बेहतर होगा कि हमें किसी एक क्षण विशेष में जाकर के अपनी गलती का एहसास हो जाता है और फिर हम माफी मांग लेते हैं। सामान्य जीवन में भी हम यही करते हैं, क्योंकि और तो आप कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ माफी मांग सकते हैं। तो मित्रों, क्या हम ये मानकर चलें कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ गया है तो उसे भूला नहीं कहा जाता? दोस्तों, फिर से मैं ये बात आप लोगों से अर्ज करना चाहूंगा कि जो इस तरह की बातें कही जाती हैं वो सार्वभौम नहीं होती, मतलब सभी के ऊपर आप हर जगह उसे लागू नहीं कर सकते, हर वक्त पर लागू नहीं कर सकते। किसी टुकड़े विशेष पर, किसी घटना विशेष पर तो लागू किया जा सकता है, लेकिन सब पर नहीं। मित्रों, जैसे कि अगर मैं सिविल सर्विस की तैयारी की बात करूं तो सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए आपके पास थोड़ा सा वक्त है, कुछ वक्त है, 2 साल 3 साल 4 साल, दैट्स ऑल, कोई अनंत काल नहीं है। अब इस वक्त में आपको सिविल सर्विस की या तो तैयारी करके सफलता पा लेनी है या इसे छोड़ करके कुछ और करना है। तो मित्रों, इस छोटे से काल के दौर में जो 2 साल से लेकर के आपके मैं मैक्सिमम 5 साल तक मान सकता हूं, लड़कियों के लिए तो शायद इतना भी नहीं होता, अगर इसमें 2 साल 3 साल आप सिर्फ गलती करने में गुजार देंगे या 1 साल भी गुजार देंगे और इसके बाद आपको अपनी गलती का पता लगेगा और फिर कहीं आप सुधारेंगे, तो आप समझ रहे हैं कि ये सुबह का भूला हुआ शाम को वापस नहीं आ रहा है, और अगर शाम को वापस आ रहा है तो ये मान करके चलिए कि वो दिन खत्म हो गया। यहां ये बात लागू नहीं होती है मित्रों। या कुछ उसी तरीके से है कि का वर्षा जब कृषि सुखानी, जब खेत सूख ही गए हैं, खेत में जो फसल बोई गई थी वो मर चुकी है, तब बरसात होती रहे उससे क्या फायदा है। तो मित्रों, हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत से अवसर होते हैं, सच पूछे तो, जिसमें हम गलती करने की हिम्मत ही नहीं जुटा सकते, गवारा ही नहीं कर सकते कि हम गलती का करें। मित्रों, अब मैं गलती की बात पर आता हूं और थोड़ा सा माफी की बात पर आता हूं। हम इस तरह की गलतियां करते क्यों हैं जिसके लिए हमें माफी मांगनी पड़े? देखिए, सीधी सी बात है कि हमें मालूम है कि हमसे गलतियां हो रही हैं, इसके बावजूद हम जानबूझकर गलतियां करते हैं। इसको आप जरा सा मनोवैज्ञानिक स्तर पर समझने की कोशिश कीजिएगा, और इसको आप सिविल सर्विस तक ही मत समझिए, जिंदगी के बहुत व्यापक क्षेत्र में इसको आप फैला दीजिए। हमको मालूम होता है कि हम गलतियां कर रहे हैं, हम किसी पर गुस्सा हो रहे हैं, किसी को किसी से बदतमीजी से बात कर रहे हैं, हमको मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं, हम रिश्वत ले रहे हैं, हमको मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं, अच्छे से मालूम है। मैं टैक्स की चोरी कर रहा हूं तो मुझे मालूम है कि मैं टैक्स की चोरी कर रहा हूं, मैं कहीं चोरी करने जा रहा हूं किसी के घर में घुस के तो मुझे मालूम है कि मैं गलत काम कर रहा हूं, इसके बाद भी हम करते हैं और इसके बाद माफी मांग लेते हैं। माफी मांग लेने से हो क्या जाता है? क्या सच में माफी दे दी जाती है, या कहीं हम अपने आप को ही तो धोखा नहीं दे रहे कि हमने माफी मांग ली? माफी मांगने जैसी कोई बात रह नहीं जाती मित्रों, चूंकि अब वही एक रास्ता बच जाता है तो हम उसको अपना लेते हैं। लेकिन याद रखिए कि यह रास्ता भी कामयाब तभी होता है जब वह माफी हमारे सुधार का आधार बन जाए। लेकिन मैंने देखा है कि फिर से हम वही गलतियां करते हैं, फिर माफी मांगते हैं, फिर से हम वही गलतियां करते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कि गलतियां करना हमारी आदत हो गई हो, या हम मजबूर ही हैं गलतियां करने को, कुछ इस तरह का एहसास होने लगता है। मित्रों, जैसे मैं अब सिविल सर्विस के स्टूडेंट्स के बारे में बात करूं, तो आप सब यहां से पढ़ करके गए और कुछ दिनों के बाद आपने डेली ऑडियो सुनना मान लीजिए बंद कर दिया, ठीक है। मेरा एक ही कहना है कि ये जो आपका निर्णय है, ये आपकी जो असहमति हुई, यह जो असहमति है, ये तार्किक असहमति है या आपकी पसंद नापसंद पर आधारित असहमति है? देखिए, दोनों में रात दिन का फर्क है। तार्किक असहमति का मतलब है कि बताई गई बातों को आपने देखा, सुना, परखा, अनसॉल्व्ड पेपर्स लिए, अभी के पेपर्स लिए, पिछले लेक्चर्स याद किए, प्रेस क्लिपिंग्स आपने देखी, ये सारे काम आपने किए, जो क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए आपने वो देखे, करंट कंटेंट की चीजें देखी, और उन सबको देखने करने के बाद लगा कि यार इसमें तो कुछ आया ही नहीं परीक्षा में, ये तो सब बेकार की चीजें हैं, आपको ये लगा। और अगर ये लगता है तो ये है तार्किक असहमति, आप बिल्कुल मुक्त हो जाइए। क्योंकि तार्किक अगर असहमति है तो फिर सहमति का कोई मतलब नहीं, केवल आस्थाओं के आधार पर सहमति मत बनाइए। इसीलिए मैं गौतम बुद्ध को सबसे ज्यादा पसंद करता हूं, जिन्होंने कहा अपो दीपो भव, अपना दीपक खुद बनो। लेकिन दीपक तो हाथ में होना चाहिए, अंधेरे में तो आप नहीं चल सकते, दीपक तो हो आप, मतलब उसका मूल्यांकन तो करें। तार्किक अगर असहमति है तो बिल्कुल सही है, लेकिन आप अगर किसी चीज को केवल अपनी पसंद और नापसंद के आधार पर अस्वीकार कर रहे हैं, ठुकरा रहे हैं, तो दोस्तों ये कोई वैज्ञानिक निर्णय नहीं है। हमें बहुत सी चीजें नापसंद होती हैं जो हमारे लिए जरूरी हैं, तो क्या किया जाए? क्या हमें उन्हें अपनी पसंद नहीं बना लेना चाहिए, या उसे छोड़ करके बिल्कुल मुक्त हो जाना चाहिए? मैं दोस्तों, ये हमारे अवचेतन मन के बहुत गहरे धंसा हुआ एक विज्ञान है, मनोविज्ञान है, बहुत गहरे धंसा हुआ मनोविज्ञान, और यह इतना विचित्र मनोविज्ञान है कि हम अपनी पसंद को ही तार्किकता का नाम दे देते हैं। हमें लगने लगता है कि नहीं, यही सही है, मैं जो पसंद कह रहा हूं वही सही है, मैं जो कह रहा हूं वही सही है, मैं जो कर रहा हूं वही सही है, क्योंकि मेरी पसंद है। वहां मैं यथार्थ को ठुकरा देता हूं। मेरे पास कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होते हैं, मेरे पास कोई डेटा नहीं होते हैं, मेरे पास कोई घटनाएं नहीं होती हैं, मेरे पास कोई उदाहरण नहीं होते हैं, इसके बावजूद, इन सब के ना रहने के बावजूद मैं अपनी बात पर डटा रहता हूं कि नहीं, यही सही है, मैं ही सही हूं। और मुझे लगता है मित्रों कि इससे खतरनाक बात और कोई दूसरी नहीं हो सकती। मित्रों, मैं ये जो बात कह रहा हूं उदाहरण में सिविल सर्विस का इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इसी तरह के मेल को आधार बनाकर मैंने आज के लाइफ मैनेजमेंट की बुनावट की है। लेकिन आप प्लीज इसे यहीं तक सीमित न रखें, इसे आप इनलार्ज कर सकते हैं, इसे आप फैला सकते हैं, इसे आप कहीं तक बढ़ा सकते हैं। जिंदगी के सारे क्षेत्रों में हम यही करते हैं। इसीलिए मित्रों, मुझे तो कभी कभी ये भी लगने लगता है, हो सकता है कि आप मेरी इस बात से सहमत न हो, ज्यादातर लोग सहमत नहीं होंगे, कि सच बात तो यह है कि हम जिंदगी में सफल ही नहीं होना चाहते। हमारे अंदर एक बहुत गहरे कहीं ना कहीं असफलता का भाव बैठा हुआ है कि हम सब असफल होना चाहते हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो कैसे आप उन चीजों को छोड़ सकते हैं जो सफल होने के लिए जरूरी हैं? आप सोच करके देखिए मेरी इस बात पर, आपको थोड़ी सी छटपटाहट होगी, बात अविश्वसनीय भी लगेगी और थोड़ी सी तीखी भी है, थोड़ी सी कड़वी भी है कि सर आप क्या कह रहे हैं कि हम आईएएस नहीं बनना चाह रहे, हम फलाना नहीं करना चाह रहे, आप क्या बात कर रहे हैं? लेकिन मित्रों, थोड़ा सा गहरे उतरिए, थोड़ा सा गहरे उतरिए, मेरे इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए कि अगर आप बनना चाह रहे हैं तो आप वो सब क्यों नहीं करना चाह रहे हैं जो किया जाना चाहिए? फिर कौन है वो जो रोक रहा है आपको करने से? कौन है जो आपको भटका रहा है? कौन है जो आपकी गति को कम कर रहा है? कौन है वो? आप उसे पहचानिए, क्योंकि हो तो वही रहा है। आप भटक रहे हैं, चीजों को छोड़ रहे हैं, जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके से नहीं कर रहे हैं, खुद की जड़ता के शिकार हैं, अपने ही पूर्वाग्रह और दुराग्रहों की सीमा में कैद हैं। तो कौन है जिसने ये सब कर रखा है? आपको समझ में आ जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे अंदर मौजूद वह असफलता का भाव ही ये सब करा रहा है? और जिनमें सफलता का भाव होता है वो फिर ऊपर कुछ ऐसी दिखावटी बातें नहीं करते, वो तो सीधे है कि करना है बस, दैट्स ऑल, और फिर उनको जिंदगी में कभी कोई रोक भी नहीं पाया है। तो मित्रों, मुझे लगता है कि माफ कर दे का जवाब सिर्फ यही है कि दोबारा ऐसी गलतियां न हो, दैट्स, इससे अधिक और कुछ भी नहीं है। क्योंकि किसी के माफ कर देने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है, तो शब्दों का खेल है। लेकिन हमारी संस्कृति ने इस तरह के कुछ खेल रच रखे हैं हम सबके लिए, तो समाज में हम इस तरह के खेल खेलते रहते हैं। लेकिन मित्रों, इससे जिंदगी में कुछ सकारात्मक गुणात्मक परिवर्तन नहीं आता। बात तो तब है जब जिंदगी में गुणात्मक परिवर्तन आए, और यदि गुणात्मक परिवर्तन लाना है तो सिर्फ एक ही उपाय है कि वह गलती दोहराई ना जाए। तो दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को मैं यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।